ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले के पहले आज प्रयागराज में 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क ओवरब्रिज और फ्लाईओवर, स्थायी घाटों और नदी किनारे की सड़कों का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं प्रयागराज और इसके आसपास आवागमन सुविधाजनक बनाने और संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री गंगा में गैर उपचारित अवजल का प्रवाह रोकने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज दिन के लगभग 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर पूजन अर्चन के साथ उनकी यात्रा आरंभ होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया है। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में भारत के लिए हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली का अनावरण किया है। इस अवसर पर श्री कुमारस्वामी ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष अक्टूबर माह में 3.5% की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में मामूली कमी के बाद सितंबर और अक्टूबर में लगातार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन के तीन प्रमुख घटकों में विनिर्माण क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि हुई है। राज्यसभा के नेता और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ पार्टी नेताओं के कथित संबंधों पर निशाना साधा है। श्री नड्डा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उपराष्ट्रपति पद का सम्मान न किए जाने की भी आलोचना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ चौथी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि आशाजनक क्षेत्रों और प्रमुख हितों पर बहुत ही उपयोगी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो आज संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करने को लेकर उत्सुक हैं। भारत में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर संस्करण में आईआईटी खड़गपुर की 5 टीमों ने जीत हासिल की है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने विजेताओं के नामों की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली विधानसभा क्षेत्र से, संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से, हारून यूसुफ को बल्ली मारान, रागिनी नायक को वजीरपुर, अब्दुल रहमान को सीलमपुर और अनिल भारद्वाज को सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन से हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए दूरदर्शन आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। देश में 1 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2024 के बीच उद्यम पंजीकरण पोर्टल यूआरपी और उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म यूएपी पर 2.21 करोड़ महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई पंजीकृत हुई हैं। भारत थाईलैंड की 9वीं रक्षा वार्ता कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के रक्षा उपस्थायी सचिव जनरल थारापोंग मलकम ने की है। भारत ने 157 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धग्रस्त गजापट्टी में तत्काल बिना शर्त और स्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। महासभा ने 2 प्रस्तावों को भारी बहुमत से मंजूरी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।